ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुण अनुरक्तम् व्यसनाय जन्तः क्षेमाय नैर्गुण्यम् अथ मनः स्यात् यथा प्रदीपः घृतवर्ति अस्मान् शिखा सधूमः भजति हि अन्यदा स्वं पदं तथा गुणकर्म अनुबद्धं वृत्तिः मनः श्रयते अन्यत्र तत्त्वम्। गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीप घृतवर्तिमस्मन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्। पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनः स्रजतेऽन्यत्र तत्त्वम्। गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीप घृतवर्तिमस्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्। पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनः स्रजतेऽन्यत्र तत्त्वम्। वृत्तिर्मनः स्रजतेऽन्यत्र तत्त्वम्। गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तः क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनः स्यात् यथा प्रदीप घृतवर्तिमस्नन् शिखा सधूमा भजति ह्यन्यदा स्वम्। पदं तथा गुणकर्मानुबद्धम् वृत्तिर्मनः स्रजतेऽन्यत्र तत्त्वम्। गुणानुरक्तम, गुणों के प्रति आसक्त होकर व्यसनाय संसार में बद्ध होने के लिए जंतु जीवात्मा के क्षेमाय परम कल्याण के लिए नैर्गुण्यम गुणों से अप्रभावित रहकर अथ इस प्रकार मन मन स्यात् हो जाता है यथा जिस प्रकार जितना कि प्रदीप दीपक घृतवर्ती घी के भीतर रखी बत्ती स्नान जल कर सिखा ज्वाला लौ सधूमा धुआं से युक्त भजती भोगती है ही निश्चय ही अन्यदा अन्यथा स्वम अपने आप पदम पद तथा उसी तरह गुणकर्म अनुबद्धम गुणों तथा कर्मों से बद्ध वृत्ति ही नाना प्रकार के कार्य मन मन श्रयते शरण लेता है अन्यत्र अन्यथा तत्वम अपनी मूल स्थिति की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, वह जीवात्मा का मन सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में लीन हो जाता है तो जीवन बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं, किंतु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है, किंतु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहता है तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं, और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है तो कृष्ण भावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है। तात्पर्य, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मन ही इस जीवन तथा मुक्ति का कारण स्वरूप है। मन के ही कारण प्रत्येक प्राणी कष्ट उठा रहा है, अतः यह आवश्यक है कि मन को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए। यह भौतिक आसक्ति से इसे विमल करके ईश्वर की सेवा में लगाया जाए, इसे ही आत्मवृत्ति कहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्यायतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करता है और किसी भी स्थिति में उससे गिरता नहीं, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म स्तर पर पहुंच जाता है। हमें अपने मन को पूर्णतया कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, तब यह हमारी अपने घर लौटने के लिए मुक्ति और परम धाम वापस जाने का कारण बन जाएगा। किंतु यदि हम सांसारिक विषयों में इसे इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाए रखेंगे तो यह अविरत बंधन का कारण बनेगा और हम इसी संसार में विविध देह धारण करते रहेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के फल भोगते रहेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। यहाँ जट भरत जी का प्रसंग चल रहा है और काफी दिनों से चल रहा है, आप लोग कथा अंश से परिचित हैं, कई एक बार आवृत्ति हो ही जाती है। वर्तमान में सिद्धांत की चर्चा हो रही है और पीछे के श्लोकों में ये कहा गया है कि जब तक थोड़ी भी आसक्ति रहेगी, गुण का प्रभाव रहेगा, चाहे वह सत्वगुण का प्रभाव हो, रजोगुण का प्रभाव हो या तमोगुण का प्रभाव हो, और शरीर बंधन रहेगा ही। और बंधन के मूल कारण मन को स्थापित किया जा रहा है और स्पष्ट सिद्धांत दे रहे हैं पीछे एक श्लोक में कि तस्मान मनो लिंग मदो बदंती गुणा गुणत्वस्य परा वरस्य, अरे कि इसी से जो विद्वान व्यक्ति हैं तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मन ही कारण है गुणा गुणत्वस्य, चाहे यह भौतिक देह हो या भौतिक देह से ऊपर अपना स्वरूप हो, आध्यात्मिक शरीर हो, और दोनों के लिए कारण मन है, दोनों प्रदान करने वाला यही है। अभी प्रश्न होगा कि एक ही चीज विभिन्न स्थिति को कैसे प्राप्त करा देगा। मन के विषय में कह रहे हैं कि जो निकृष्ट योनि है, संसारिक जीवन है, इसको भी मन प्राप्त कराता है, और अगुणत्वस्य जो निर्गुण अवस्था है, जो चिन्मय धाम है, वहां भी मन ही पहुंचाता है। कभी कभी व्यक्ति मन पर बड़ा दोषारोप करता है और बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं, प्रभु जी मन बड़ा चंचल है। कभी कभी लोग दोष लगाते हैं, अरे मन बड़ा खराब है, जो हो मन के विषय में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए, मन की यह विशेषता है कि वह तब तक स्थिर नहीं रह सकता जब तक भगवान की प्राप्ति न करा दे। तो इस अर्थ में मन बड़ा सहयोगी है, मन कहीं जा करके संतुष्ट हो जाता है तब तक वहां से भी उबने लगता है, स्थायी रूप से तभी यह संतोष अनुभव करेगा जब भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इस दृष्टि से मन बड़ा उपयोगी तत्व है। तो कह रहे हैं कि तस्मान मनो लिंग मदो वदन्ते गुणा गुणत्वस्य परावरस्य, कोई भी देह हो, चाहे सगुण देह है निर्गुण देह है, तो उसका कारण मन को कहा जाता है। भारी प्रश्न एक ही चीज है, दोनों का कारण कैसे हो जाएगा? तो अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि अलग अलग स्थिति के कारण वो अलग अलग देह का कारण हो जाता है। वो बिल्कुल स्पष्ट श्लोक है, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो क्षेमाय निर्गुण मनो मन स्याद। यदि यह मन गुण में अनुरक्त है, गुण में आसक्त है, तो यह दुख का कारण बनेगा, और यदि यही मन निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर जाए तो क्षेमाय मुक्ति का कारण हो जाएगा। अब इस बात को एक उदाहरण से समझा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं दीपक का। आप लोग दीपक जलाते हैं, अब पता नहीं इस समय तो घी का दीपक तो शायद दीपावली को कोई कोई जलाता होगा, कार्तिक में हम लोग मंदिर में जलाते हैं। पहले गांव में भी दीपक तेल का या घी का जलाते थे, वही साधन था प्रकाश का। और कुछ लोगों को तो अब दीपक का उतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं, वे दीपक जलाते हैं और घी में या तेल में एक बाती रखते हैं, वर्ती इसको कह रहे हैं। तो जब तक बाती डाल करके तेल घी जलाएंगे और दोनों का संयोग है तो दीपक तो जलता है लेकिन धुआं जरूर निकलेगा। तेल घी में बाती भोर करके दीपक जला रहे हैं तो धुआं जरूर निकलेगा। तो उसी प्रकार यदि गुण में अनुरक्त है, गुण से सना हुआ है मन, तो कष्ट जरूर होगा। शिखा धमु सधुमा भजति हिरण्यदास्वम। अच्छा मान लीजिए दीपक जला रहे हैं तो अग्नि तत्व है, आगे जल रहा है तो धुआं निकल रहा है, लेकिन अब आग धुआं नहीं दीप बाती और घी से अलग हो जाए तब उसमें धुआं निकलेगा कि नहीं? अब धुआं नहीं निकलेगा, उस समय भी आग की सत्ता है, वह अपने स्वरूप में चला जाएगा। पंच महाभूत में जो अग्नि तत्व है तो वहां अपने मूल अवस्था को प्राप्त करेगा। तो कह रहे हैं कि पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्तिर्मन श्रयते न्यत्र तत्वम। कि उसी प्रकार यह जो मन गुण और कर्म से अनुबद्ध है तो लाखों लाखों प्रकार के वृत्ति में फंसा हुआ, अनेक वृत्ति इसके अंदर आ रही है, लेकिन इससे मुक्त हो जाए तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाएगा, अपने स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगा। तो श्लोक बिल्कुल स्पष्ट है, उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई घी और बाती जलाएंगे तो धुआं निकलेगा ही, और मन में यदि गुण की आसक्ति है तो कष्ट भोगेंगे ही। लेकिन एक स्थिति है कि कष्ट नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं, हम लोगों को तो उस उदाहरण का अनुभव ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यवस्था हो कि सोना को ही जला दिया जाए। कभी कभी देखते हैं कि कुछ चीज तरल है तो उसको गैस बना करके जला देते हैं। ये जो गैस से प्रयोग करते हैं ये लिक्विड ही होता है, और एक स्थिति ऐसी है कि वो फिर गैस में परिणत हो जाता है। आप गैस सिलेंडर देखेंगे तो उसमें कुछ आवाज आता है ना, वो लिक्विड जैसा ही होता है, लेकिन वो कुछ टेम्परेचर का ऐसा विधान है कि एक टेम्परेचर और प्रेशर पर वो गैस के रूप में हो जाता है। तो उसी तरह मान लीजिए कि कोई व्यवस्था हो कि सोना को ही डायरेक्ट जलाया जाए, हम लोग तो घी और बाती का प्रयोग करके दीपक जलाते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सोना को ही डायरेक्ट जलाया जाए तो उसमें धुआं नहीं निकलेगा। उसी प्रकार व्यक्ति गुण से अलग हट करके और भगवान की सेवा में लग जाए तो अब दुख समाप्त हो जाएगा, परम आनंद हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो स्पष्ट उदाहरण दे करके समझा रहे हैं राजा को रघुगण जी को, जटभरत महाराज, जटभरत जी। और पीछे आप एक ध्यान देंगे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी जटभरत जी बोल रहे हैं बहुजोग ग्रंथ सम्मत, इनका जो प्रवचन है कोई ऐसे भावना पर आधारित नहीं है। जो भी बोल रहे हैं तो इसके पीछे बहुत भारी सपोर्ट है, बहुजोग ग्रंथ सम्मत, हृदय ग्रंथ विमोचन, ये शास्त्र पर आधारित है। और इसका प्रभाव है कि हृदय ग्रंथि को दूर करने वाला है। यह बिल्कुल सिद्धांत सम्मत शास्त्र सम्मत विचार है और श्रीमद् भागवतम पर ही विचार करें तो इस सिद्धांत को श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह रखा गया है। जैसे कपिल देव अपने माँ को उपदेश दे रहे हैं तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, ये चित्त को ही मन को ही बंधन का कारण कहा गया है। और मुक्तये चात्मनो मत, आत्मा के मुक्ति का भी कारण मन ही माना गया है। वे किस स्थिति में बंधन करता है, किस स्थिति में मुक्ति का कारण होता है, गुणेषु रक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। यदि ये प्राकृत गुण में अनुरक्त है तो इससे बंधन होगा और रतम वा पुंसि मुक्तये, यही आसक्ति भगवान में हो जाए तो मुक्ति का कारण है। वो सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है। और खास करके जो टिप्पणी किया गया है कि बहु योग ग्रंथ सम्मत, यह योग ग्रंथ सम्मत सिद्धांत है। जो भी बोल रहे हैं जट भरत जी तो बिल्कुल शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न किया गया है, प्रश्न पृथु महाराज पूछे हैं। आप कथा सुने हैं पीछे कि पृथु महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ तो सब लोग उनकी वंदना करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। यद्यपि पृथु महाराज मना कर रहे थे लेकिन फिर भी ऋषियों के इशारा पर बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी बड़ाई कर रहे थे। और जब अभिषेक का कार्य पूरा हो गया तो पृथु महाराज नगर में प्रवेश किए और नगर को खूब सजाया गया था और सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे। जब राजपद पर आसीन हो गए, कार्य करने लगे, और पृथु महाराज एक दिन एक सभा किए और अपने प्रजा को समझाने लगे। अब कह सकते हैं राष्ट्र के नाम संदेश दिए तो स्पष्ट शब्दों में वे कहे कि जिस राजा के राज्य में प्रजा भक्ति करती है तो उसे को धन्य माना गया है। आप लोग भक्ति में लगे हैं तो इससे हमारा भी जस बढ़ेगा। और कई एक सिद्धांत को दिए। इसके बाद दूसरे लोग जो थे तो पृथु महाराज की फिर बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो अभी वे लोग प्रशंसा कर रहे थे तब तक पृथु महाराज देखे कि चतुष्कुमार लोग आकाश से उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ही वे देखे तो उनके प्रकाश से ही, उनके तेज के पुंज से ही पृथु महाराज समझ गए कि ये चतुष्कुमार हैं। कह रहे हैं कि तं सिद्धेश्वरान राजा व्योमनोत्तर चिषा लोकान पापन कुर्वन्त्या सानुगोचष्ट लक्षिता। वे लोग उतर रहे थे आकाश से तो समझ गए कि ये सिद्धेश्वर हैं, सिद्धों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके शरीर से इतनी कांति निकल रही थी कि अंधकार दूर हो रहा था और वे सारे जगत को निष्पाप कर रहे थे, मंगल का संचार कर रहे थे। तो करें कि जब ही पृथु महाराज उन लोगों को देखे तो पृथु महाराज का प्राण ऊपर जाने लगा, मानो अपने प्राणों को रखने के लिए पृथु महाराज तुरंत खड़ा हो गए। अरे पृथु महाराज खड़ा हुए तो जितने भी उनके सहयोगी थे, सदस्य लोग थे, सब लोग खड़ा हो गए। अरे सब लोग उन सिद्धों को नमस्कार किए, कह रहे हैं कि जब चतुष्कुमार को देखे पृथु महाराज तो उनमें इतनी आदर बुद्धि है कि उस आदर से एकदम संयमित हो गए, उनका गर्दन झुक गया और विविध विधि पूर्वक उनकी अर्चना किए। जैसे साधुओं का सम्मान करना चाहिए वैसे किए, उनको अर्घ दिए, आसन दिए और भी सत्कार किए, स्वागत पूछे और जो भी आवश्यकता थी तत्काल में उसको पूरा करके। और जब चतुष्कुमार लोग सुखपूर्वक बैठ गए तो उनका चरण धोए, चरण धो करके और अपने मस्तक पर रखें, कह रहे हैं कि तत्र शीलवतामृतम आचरण मानय निव। पृथु महाराज मानो जो सदाचारी पुरुष हैं उनके आचरण को सिखा रहे हैं कि कोई भी सिद्ध पुरुष आवे, भगवान के उन्नत भक्त आवे तो उनका ऐसे ही सत्कार करना चाहिए, उनका चरण धोना चाहिए, चरण धोकर मस्तक पर रखना चाहिए। तो पृथु महाराज ये जो क्रिया कर रहे हैं मानो अपने प्रजा को शिक्षा भी दे रहे हैं और चरण धो करके मस्तक पर जल लिए, इसके बाद उनको आसन दिए। तो ये राजा हैं, खूब सुंदर आसन दिए, सोने का आसन दिए। जब सोने के आसन पर चतुष्कुमार लोग बैठ गए तो कह रहे हैं कि बहुत शोभित हो रहे थे। जैसे चूल्हे में आग का तेज अधिक होता है वैसे वे लोग आसन पर लग रहे थे। श्रद्धा संयम संयुक्त प्रीत प्राह भवाग्रजान, बहुत श्रद्धा के साथ और नम्रता के साथ उनका सत्कार करने लगे, उनसे कहने लगे। पृथु महाराज कह रहे हैं कि मैं क्या पुण्य किया हूँ, कौन मंगल आचरण किया हूँ कि आप लोगों का दर्शन हो गया। अरे बड़े बड़े जो योगी हैं उनके लिए भी आप जैसे संतों का दर्शन दुर्लभ है, हम क्या पुण्य किए हैं, क्या मंगल किए हैं कि हमको आप लोगों का दर्शन हो गया। वे कह रहे हैं कि यद्यपि आप लोग तो संसार में विचरण करते रहते हैं लेकिन सब लोग आप लोगों को देख नहीं पाते। इस संसार में भगवान के भक्त विचरण करते रहते हैं लेकिन कठिनाई यह है कि जन समुदाय उनको पहचान नहीं पाता। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे परमात्मा की तो सर्वत्र स्थिति है, भगवान तो सर्वव्यापक हैं लेकिन कौन उनको देख रहा है। अरे सामान्य आदमी की बात तो दूर, जो लोकपाल लोग हैं, सृष्टि करने के अधिकारी हैं, वे भी भगवान को नहीं देख रहे हैं। और उसी प्रकार आप लोग के हित के लिए विचरण करते रहते हैं लेकिन आप लोग को सब लोग पहचान नहीं पाते, सब लोग जान नहीं पाते। ये बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे संत हैं, बहुत उन्नत संत हैं लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते, इसलिए लाभ नहीं ले पाते हैं। अब इस बात को कहने पर एक घटना का स्मरण हो रहा है। एक बार की बात है कि हम लोगों के गुरु महाराज हम लोग गांव में रथ यात्रा का आयोजन किए थे और रथ यात्रा था और उसके लिए कुछ चंदा इकट्ठा हो रहा था। एक दिन मंगला आरती के बाद महाराज जप करते हुए कुछ दूर निकल गए, से जूता भी नहीं पहने थे और कुर्ता वगैरह भी नहीं पहने थे, ऐसे लुंगी पहने थे के उतरिए रखे थे। पल तो मंगला आरती के बाद जप के लिए निकले लेकिन अब उत्तर दिशा में जाने लगे तो उनके मन में विचार आया कि अब इतना नजदीक आ गया हूँ, कुछ लोग चंदा देने को कहे थे तो चंदा लेकर के चलते हैं। तो बाजार में चले गए और एक सुनार का दुकान था, वहाँ के दृष्टि से धनी दुकानदार है, उसका दुकान खुला था। तो गए, कहे कि रथ यात्रा के लिए, चंदा के लिए हम लोग आए हैं। कि कहाँ रथ यात्रा है गुरुरा? वो तो वहाँ तो एक साधु बड़ा ज्ञानी है, बड़ा बड़ा ही वे उन्नत भक्त हैं। और कहे कि हाँ एक हैं। तब खूब प्रशंसा करने लगे, वो तो बड़े विद्वान हैं। तो महाराज तो अब कुछ कुर्ता भी नहीं पहने थे, ऐसे गर्मी के दिन थे, चले गए थे। तो महाराज कहे कि हाँ वही भेजे। तो वहां से वो चंदा लेकर के आ गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझा, वो नाम भी बोल रहा था, सब बोल रहा था, लेकिन पहचान नहीं पाया। तो यहाँ पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि भगवान के भक्त लोग घूमते रहते हैं लेकिन कोई पहचान नहीं पाता। हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि आप हमारे घर में आए। और वे कह रहे हैं कि वास्तव में भले ही निर्धन व्यक्ति कोई हो, अधना अपि ते धन्य, एकदम निर्धन है फिर भी उसको धन्य माना जाएगा। किस स्थिति में? कि उसके घर के किसी सेवा को कोई संत स्वीकार कर लिया, भगवान का भक्त थोड़ा जल स्वीकार कर लिया, या चट्टाई स्वीकार कर लिया, या भूमि स्वीकार कर लिया, या राजा को स्वीकार कर लिया, या राजा के आदमी को स्वीकार कर लिया, तो भले ही उसके घर में धन नहीं है लेकिन फिर भी वह धन्य है, वह बहुत सौभाग्यशाली है, कुछ भी स्वीकार कर लिया, चाहे भूमि स्वीकार कर लिया, या घास स्वीकार कर लिया, तो या जल स्वीकार कर लिया। तो सिद्धांत समझना चाहिए कि सबसे अच्छी बात तो यह है कि कोई वैष्णव घर में आकर के भोजन करें, भोजन करें तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन कदाचित भोजन के अभाव में जल ही ग्रहण कर लिए, फिर भी वह गृहस्थ धन्य है। अच्छा मान लीजिए कि जल का भी अभाव है, तो कोई चट्टाई पर बैठ गए, घास को स्वीकार कर लिए, कुछ को स्वीकार कर लिए, फिर भी वो धन्य है। क्योंकि हो सकता है कि चट्टाई भी ना हो, तो लिपा पोता भूमि है उसी पर बैठ गए, फिर भी वो धन्य है। अच्छा मान लीजिए कि वो भी संभव नहीं है, तो कजाति गृह स्वामी केवल आकर के हाथ जोड़ करके मधुर वचन बोल दिया, फिर भी वह घर धन्य है। जब मान लीजिए कि गृह स्वामी भी नहीं है, तो उसके बच्चे या पत्नी या नौकर वे भी हाथ जोड़ करके मधुर वचन बोले, तो इससे भी वह गृह धन्य है। भले ही वो घर में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि अरिक्ता, इतना धन संपदा है कि वो कभी खाली होने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है, लेकिन किसी वैष्णव का सत्कार नहीं हुआ, तो यही समझिए कि वह उस बड़े वृक्ष के समान है जिस पर केवल सांपों का डेरा हो। कोई वृक्ष है और उस पर खूब सांप डेरा जमाए हैं, तो कौन व्यक्ति उस वृक्ष के नीचे जाएगा? तो उसी प्रकार कोई कोई गृहस्थ होते हैं कि उनका वचन इतना कठोर होता है कि उससे कोई व्यक्ति नजदीक नहीं जाता है। वो कह रहे हैं कि वह गृहस्थ, तो उसका गृहस्थ, उसका घर तो उस वृक्ष के समान है जिस पर सांपों का डेरा है। तो ऐसे स्वागत किए कि बहुत अच्छा हुआ आप आए। और इसके बाद सीधे प्रश्न करते हैं, ये देखिए जो लोग विषय को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं, विषय को जुटाने में भोगने में पूरा जीवन लगाए हैं, उनके भी कल्याण का कोई उपाय है? पृथु जी कहें कि क्या प्रश्न कर रहे हैं। अरे भाई, घर में कोई अतिथि आया तो अतिथि के कुशल प्रश्न पूछते हैं ना, ठीक से आए ना, तो तुम अतिथि के विषय में ना पूछ करके ये अपने विषय में पूछने लगे, यही शिष्टाचार है। और पृथु महाराज कह रहे हैं कि देखिए, आप लोगों से कुशल प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मन में कुशल व कुशल का विचार ही नहीं आता है, तो फिर प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई अवसर नहीं है। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि जो लोग इस संसार में पड़े हुए हैं, जो विविध प्रकार के ताप भोग रहे हैं, तो संप्रिक्षे भव एतस्मिन् क्षेम केनांजसा भवेत, उनका कल्याण आसानी से कैसे हो जाएगा, इस मैं यह पूछ रहा हूं, क्योंकि पूछने लायक यही है। जब इस प्रकार प्रश्न किए पृथु महाराज, तो सनकादि बहुत प्रसन्न हुए, उनके प्रश्न का अभिवादन किए और कहे कि आप में तो ये गुण है, आपके कल्याण के विषय में कोई जिज्ञासा करना नई बात नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, वास्तव में आप लोक हित के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे प्रश्न से सबका मंगल होता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शास्त्रे स्वयानी व सुनिश्चितो निर्णाम क्षेमस्य सद्भग विमर्शेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मनि निर्गुणे चैया। कि जितने विचारित शास्त्र हैं, जो शास्त्र इस विषय पर विचार किए हैं, तो उनका खूब बढ़िया से विचार करने के बाद यही निर्णय है, यान एवं सुनिश्चित, इतना ही निश्चित किया गया है कि असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चैया। कल्याण का साधन इतना ही है कि असंग अनात्मनि, जो जड़ पदार्थ है, देह है या देह से संबंधित चीज है, इसमें अनासक्ति, और भगवान जो निर्गुण हैं उनमें आसक्ति, सारे शास्त्रों में बस यही निश्चित किया गया। इसी सिद्धांत को भरत जी समझा रहे हैं, देखो यदि मन गुण से अनुरक्त रहेगा तो उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, और यदि निर्गुण अवस्था को प्राप्त होता है तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न है कि इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो श्रीमद् भागवतम में भी बहुत साधन दिया गया है, और श्रीपाद रूप गोस्वामी स्पेशली भक्ति रसामृत सिंधु की रचना किए हैं साधन भक्ति को जानने के लिए। तो भगवत भक्ति साधन है, भागवत धर्म का आचरण करने से स्वाभाविक ही मन निर्गुण अवस्था में चला जाता है और हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है ना?